الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کو کلام اللہ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اس لیے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب رمضان المبارک میں ہیں. تین رمضان کو حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے نصیب ہوئے، چھ رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف ملے، 12 رمضان کو داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور 27 رمضان کو نبی علیہ السلام کو قرآن ملا. رمضان اور قرآن کے اندر خاص مشترکہ صفات ہیں. مثال کے طور پر، روزہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا، تو قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان، تو روزہ بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. دوسری بات، تلاوت سے انوار برستے ہیں، روزہ دار آدمی پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انوار برستے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس سے قرب خاص نصیب ہوتا ہے. روزے کے بارے میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزا بہ، تو روزہ بھی انسان کو اللہ کا خاص قرب عطا فرما دیتا ہے. تلاوت میں تشبہ بالحق ہوتا ہے، اللہ نے بھی قرآن کی تلاوت کی، متکلم تو وہی تھے جن کا کلام. روزہ دار آدمی کو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اللہ کی صفات کے ساتھ تشبہ نصیب ہوتا ہے. تو روزے میں اور قرآن میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، اس لیے یہ مہینہ اللہ کے کلام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کاش بقیہ سال میں اترنے والی رحمتوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ مناسبت بھی نہیں ہے. اکیلے رمضان میں اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ عجیب مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا، اس کو عبادت بنایا گیا. روزہ دار کو چاہیے کہ جتنی تلاوت کر سکے، جتنی تلاوت کر سکے اتنا کم. ہمارے اکابر رمضان المبارک میں تلاوت کا بہت اہتمام فرماتے تھے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراوی کی نماز میں. رمضان المبارک کے اندر 63 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھتے تھے. ہم نے تو تراوی میں ایک دفعہ سنانا، 63 मरतबा, अल्लाह अकबर। बच्चों के हाथ में नावल आ जाए ना तो माँ बाप चीखते रहे, छोड़ते नहीं, पढ़ते रहते हैं। तो बच्चों को जब मैं कभी देखता हूँ ना तो मुझे फौरन कुरान याद आता है कि काश जितना इस बच्चे को नावल पढ़ने का शौक है और मज़ा पा रहा है, काश कि हम अल्लाह का कुरान पढ़ने पर वो मज़ा पा लेते। और जिनके दिल कुरान के नूर को कबूल करते हैं उनको मज़ा ऐसा ही आता है। चुनाचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि रमज़ान मुबारक में 70 कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा करते थे। यहाँ पर कुछ लोगों के जहन में एक इश्काल वारिद होता है, वो जी कुरान मजीद को 3 दिन से पहले मुकम्मल नहीं पढ़ना चाहिए। वो तो नादरा खान लोगों के लिए है। हाफिज के लिए कहीं पाबंदी है कि एक दिन में इतना पढ़ सकता है, ऐसे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता? कहीं पाबंदी नहीं। हाफिज का काम कुरान मजीद के हिफ्ज को मजबूत रखना, चाहे उसे एक दिन में पूरा कुरान पढ़ना पड़े, चाहे एक दिन में 2 मरतबा कुरान पढ़े। तो वो मसला नाजरा खां बंदे के लिए है, लेकिन वो हुफाज पे भी लगा देते हैं। जबकि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम से भी साबित है कि वो हुफाज थे, एक दिन में एक कुरान मजीद की तिलावत कर लिया करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनका मामूल पूरी जिंदगी हर हफ्ते कुरान मजीद पढ़ने का था। रोजाना एक मंजिल पढ़ा करते थे और 7वें दिन कुरान मजीद मुकम्मल होता था। कतादा रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ दरस कुरान का भी मामूल था और हर 7वें दिन कुरान मजीद के ख़त्म का भी मामूल था। लेकिन जब रमज़ान शुरू होता था तो फिर वो हर 3 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा करते थे। जब आखिरी अशरा शुरू होता था तो हर रात में कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, ये कुरान मजीद के आशिक थे। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि रमज़ान हुवा तिलावतुल कुरान व इतआमुत ताम। रमज़ान तो भाई खाना खिलाना सहरी अफ्तारी का और कुरान पढ़ना। सुभान अल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, रमज़ान मुबारक जब आता था तो अपने दर्स को मौकूफ़ कर देते थे, ख़त्म कर देते थे और फरमाते थे हाज़ा शहरुल कुरआनी, ये कुरान मजीद की तिलावत का महीना है। तो पूरा महीना कुरान की तिलावत में गुजारा करते थे। सईद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिन के शुरू में पूरे कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करती थी। ज़ुबैद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हर आने वाला बंदा, उसका ये मामूल था कि रोज़ाना एक कुरान पाक पढ़े। मंसूर इब्ने ज़ादान के बारे में आता है कि यख्तिमुल कुरान मा बैन ज़ुहर वल असर, ज़ुहर और असर के दरमियान पूरे कुरान की तिलावत कर लिया करते थे। अल्लाहु अकबर, आप हैरान हो रहे होंगे कि इतनी थोड़ी देर में और इतना जल्दी। जी, करने वाले करते हैं। लड़कपन में हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह ने उनको कोयल की आवाज़ दी हुई थी। इतना सोज था उनकी आवाज़ में कि ज़िंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। कुरान पढ़ते थे, लोग मस्त हो जाते थे। हम लोग उस वक्त चंद साल के थे, 7 साल 8 साल, कोई ऐसी उम्र होगी। रमज़ान का महीना था तो उनके 30-35 शागिर्द थे जो हुफाज थे। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, सुना रहे थे। तो रोज़ाना तरावी के बाद वो आते और अपने उस्ताद को कारगुजारी सुनाते, फिर अगले दिन की इंस्ट्रक्शंस लेके जाया करते थे। अल्लाह की शान के एक दिन, वो कोई रमज़ान की आखिरी अशे की रात थी, कोई 30-35 सुफात जमा थे, उनमें से एक कहने लगा कि हज़रत आज कुरान हो जाए। कहने लगे हाँ, मेरी 4 रकअत तरावी रहती है, मैंने पढ़नी है। लो जी, उन्होंने आगे मुसल्ले पे नियत बांध ली और हम लोग पीछे खड़े हो गए। वो कुरान पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। हमें नहीं पता चला कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या है। बस वो पढ़ रहे थे और हम झूम रहे थे। पता उस वक्त चला जब उन्होंने 29 पारे पढ़ने के बाद पहली मर्तबा रुकू किया, और हमारी हालत ये थी कि हम रुकू में जाना चाहते थे, जा नहीं पा रहे थे। जिसम जैसे एक जगह फ्रीज हो जाते हैं ना, तो हम घंटों खड़े हो गए सब हुफाज के पीछे। अल्लाह की शान, पहला रकू 29 पारे पे किया और दूसरी रकत में आखिरी पारा पढ़ के उन्होंने दो रकत में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया। जो उस शाक होते हैं उनको कुरान मजीद पढ़ने से ऐसी मोहब्बत होती है, ये अल्लाह का कलाम है। असल में हम अभी इस मजे से वाकिफ ही नहीं। कल भी किसी मजलिस में मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि बचपन में एक बच्चे के लिए बड़ी बात होती है कि उसको गुड़ की डली मिल जाए। अब वो गुड़ की डली के मजे पे फरेफ्ता, गुड़ की डली मांगेगा, उसे गुड़ की डली दे दो, वो खुश हो जाएगा गुड़ की डली पे। वही बच्चा जब जवान हो जाता है, बलूगत की उम्र को पहुंच जाता है, अब उसकी शादी हुई तो शादी की रात कोई उसे कहे कि भाई आज घर ना जाओ, हम तुम्हें गुड़ की डली देंगे, तो उसको कितना अजीब महसूस होगा। है वो दिल में यही कहेगा ना कि गुड़ की डली का क्या ताल्लुक इस अनार की कली के साथ। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अल्लाह वालों को कुरआने मजीद की लज्जत से आशनाई हो जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों के हालात जिंदगी में लिखा कि वो रात के अंधेरे के इस तरह मुंतजिर रहते थे जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन से मुलाकात के लिए रात का मुंतजिर हुआ करता है। ऐसे रात का इंतजार होता था, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह के सामने खड़े होंगे। अल्लाह, इमाम आजम वनीफ रहमतुल्लाह ने 40 साल इशा के वजू से फजर किया था, इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। अब इस पर बाद लोगों को अश्काल वारिद हो जाता है, कहते हैं जी इशा के वजू से फजर की नमाज। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या रुकावट है? कहने लगे जी बीवी के हुकूक और फराइज। मैंने कहा रात का वक्त मुतय्यन है। पहले तो वो इसी पे चुप हो गया, फिर मैंने उन्हें बात समझाई। मैंने कहा देखो, एक होती है उर्फ में बात करनी, ये जो उर्फ है ना इसको शरीयत ने कबूल किया है कि उर्फ में क्या बात की जाती है। अब देखें जरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान मजीद तिबियान अल्ली कुल्ली शई, हर चीज की इसमें वजाहत। अब एक उर्फ में बात की गई ना, अब अगर कोई बंदा कहे जी क्या इसमें आइसक्रीम बनाने का तरीका लिखा है, तो उसको कहेंगे पागल, ये कोई खाना पकाने की किताब थोड़ा है, ये किताब हिदायत है। हिदायत से मुताल्लिक एक इंसान को जिन बातों की जरूरत है अल्लाह ने उन तमाम को खोल दिया। हिदायत के लिए किसी दूसरी किताब की तरफ रुजू करने की जरूरत नहीं है। अब वो कह जी नहीं, कुल्ली शय, हर चीज इसमें है। अब कुल को पकड़ के बैठा रहे तो उसको कहेंगे ना तुम पागल हो, तुम इसके मफहूम को ही नहीं समझ रहे, ये उर्फ में बात की जा रही है। मलकै बिल्किस के बारे में कुरान मजीद में आता है वह ऊतियत लहू मिन कुल्ली शय, वह ऊतियत लहा मिन कुल्ली शय, हर चीज थी उसके पास। अब कोई बंदा पूछे जी उसके पास रेफ्रिजरेटर था, उसके पास आजकल एयर कंडीशन था, उसके पास लिमोजीन कार थी, तो कहेंगे पागल आदमी, उस दौर में बादशाहों के पास जो होता था वो सब कुछ उसके पास था। तो कुल के लफ्ज को पकड़ के बैठ तो नहीं ना जाएंगे, उर्फ में बात की जा रही है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने गज़वे हुनैन में फरमाया अन नबी उला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अब कोई पकड़ के बैठ गया इन लफ्जों को कि जी नबी अलैहिस्सलाम तो हजरत अब्दुल्ला के बेटे थे, दादा का नाम क्यों लिया, अब्दुल मुत्तलिब का नाम क्यों भाई? तो कहेंगे कि भाई उर्फ में खानदान की जो मशहूर हस्ती हुआ करती थी उसकी निस्बत बताया करते थे, मैं उस खानदान के उस बंदे के साथ निस्बत रखना। तो उर्फ को शरीयत ने कबूल किया। चुनाचे एक उस्ताद अगर बुखारी शरीफ पढ़कर फारिग हो और मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दें, पूरी जिंदगी पढ़ाते रहें, 30 साल उनका यही मामूल रहे, मदरसे पढ़ाएं, फौत हो जाएं, अब लोग उनका तذکرہ करते कहें जी सारी उम्र बस पढ़ते पढ़ाते ही रहे, ऐसे कहते हैं ना जी, सारी उम्र बस पढ़ना पढ़ाना ही, तो सारी उम्र का क्या मतलब, छुट्टी कभी नहीं थी, दिन में भी पढ़ाते थे रात में भी पढ़ाते थे, नहीं, सारी उम्र से मुराद मामूल ये था। तो इसी तरह जब कहते हैं कि जी 40 साल ईशा से लेके फजर तक फजर की नमाज पढ़ी, तो इसका क्या माना कि हजरत का मामूल यही था। तो उर्फ में इस चीज को कबूल करना चाहिए। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह, एक मर्तबा मरी में रमजान मुबारक में गए, ये आजिज खिदमत के लिए साथ था, 90 साल की उम्र हो चुकी थी और डायबिटिक भी थे, शुगर की बीमारी, और आपको पता ही है कि शुगर के मरीज उसको हर चंद घंटे के बाद यूरिनेशन की जरूरत पेश आती है। हजरत ने रोजा इफ्तार किया और वुजू करके मस्जिद में तशरीफ ले आए। उस रात उस मस्जिद में कुर्रा हजरात भी आए हुए थे। वो एक अजीब मामूल है जी, मुल्क के चुने हुए कुर्रा वहां आते हैं, और इमाम साहब कहने लगे कि 36 साल गुजर चुके, ऐसे हजरात ने यहां तरावी पढ़ाई कि किसी एक हाफिज को एक मर्तबा लुक्मा देने की जरूरत पेश नहीं आई 36 साल में। खड़ा ही ऐसे बंदे को करते हैं कि जिनको सूरह फातिहा की तरह पूरा कुरआन मजीद याद होता है, ऐसे बंदों को खड़ा करते हैं। एक तो होता है ना कि जी एक दफा लुकमा नहीं, जरूरत ही पेश नहीं आई लुकमे की 36 साल में, अल्लाह हू अकबर। तो चुने हुए कुर्रा हजरात इश्क रखने वाले वहां पहुंच जाते हैं। खैर तरावी पढ़ी, तरावी के बाद फिर कुरान मजीद की तिलावत, और हमारे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह तो आशिक कुरान थे। हजरत बैठे रहे, तिलावत होती रही होती रही, सुबहान अल्लाह, हत्ता के सहरी का वक्त खत्म होने में 1 घंटा रह गया। तो इंतजामिया ने ऐलान किया कि पूरे मजमे के लिए खाने का इंतजाम है, 1 घंटे के अंदर सब लोग सहरी करके फारिग हो जाए। चुनाचे देगें पकी हुई थीं, उन्होंने फौरन दस्तरखान लगाए। हजरत से पूछा कि हजरत इतनी रात गुजर गई, आप कमरे में तशरीफ ले जाएंगे? फरमाया नहीं, मैं सहरी यहीं करूंगा। अब मगरिब का वुजू है और सहरी खाने का वक्त है, हजरत ने वहीं सहरी खाई। सहरी खाने के बाद तो फिर अक्सर व बेशतर हर बंदे को वुजू की तजदीद की जरूरत पेश आती है। तो मैं करीब हुआ, हजरत वुजू ताजा फरमाएंगे, वुजू ताजा फरमाएंगे? तो हजरत ने फरमाया हूं, ऐसे फरमाया हूं। मैंने कहा हजरत काफी देर हो गई। फरमाने लगे मेरा वुजू कोई कच्चा धागा है, मेरा वुजू कोई कच्चा धागा है। खामोश, हम लोग तो अपने हजरत से ऐसे डरते थे ना, अल्लाह अकबर, के लोग बादशाहों से भी इतना नहीं डरते होंगे, इतना रोब था हमारे हजरत का, बिल्कुल 100% नुसरत तो बिर रोब की अमली तस्वीर हमने अपने शेख के अंदर देखी। खामोश हो गए। अब अजान हो गई, फजर की नमाज होने लगी, तो ख्याल था कि हजरत नमाज पढ़ते ही कमरे में तशरीफ ले जाएंगे। तो जैसे सलाम फिरा तो मैंने फिर पूछा कि हजरत कमरे में जाना है? हजरत ने इशारा कर दिया और इशारा करके हजरत मिंबर पर बैठ गए, खुद ही फरमाने लगे कुर्रा हजरात को, सारी रात आपने कुरान सुनाया, अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा। हजरत का फजर का दर्स कुरान आपकी जिंदगी का पक्का मामूल था। कई होते सफर हजर, हजरत फरमाते थे ये जो सुबह मैं कुरान बयान करता हूं मुझे इस पे रोजीना मिलता है, ये फरमाते थे। इस मामूल को कजा नहीं होने देते थे। जहां भी होते फजर का दर्स कुरान पक्का। और दर्स कुरान ऐसा होता था कि चिड़िया को पर मारने की इजाजत नहीं होती थी। सब लोग अदब के साथ, ये नहीं हो सकता था कि कोई नींद से झूमे, नहीं। अल्लाह अकबर, हमारे हजरत तो ऐसे सीधा रखते थे। हजरत ने दरसे कुरान शुरू कर दिया तो इस आजिज का ख्याल था कि भाई जैसे हम फजर के बाद तालीम करते हैं 10 मिनट की, तो ये दरसे कुरान आज 10 मिनट का ही होगा। अल्लाह अकबर, हजरत ने तो भरपूर दरसे कुरान। अल्लाह अकबर, हालांकि रमजान में जल्दी नमाज पढ़ी जाती है, हजरत ने उस वक्त दरस कुरान शुरू किया और इशराक के वक्त तक दरस कुरान देते रहे। और ऐसा अजीब हजरत पर जज्बा था कि फरमाया कि मुझे आयतों का तर्जमा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम सब उलमा हो, तर्जमा समझते हो। फिर हजरत ने आयत के बाद आयत, आयत के बाद आयत, ऐसा मजमून कि हम हैरान। एक आयत पढ़ी फिर दूसरी पढ़ी, यानी जो तर्जमा समझने वाले थे वो तो हैरान थे कि ये आमद कहां से हो रही है। अजीब हजरत की कैफियत थी। लो जी इशराक का वक्त हो गया। अब जब हजरत ने दरस कुरान खत्म किया तो इशराक की नियत बांध ली। इशराक पढ़ने के बाद हजरत कमरे में आए और वुजू की तजदीद की। आप इशा के वुजू से फजर की बातें करते हैं, हमने इस दौर में 90 साल के एक बुजुर्ग को जो शुगर का मरीज है इशा के वुजू से इशराक की नमाज पढ़ते आंखों से देखा है। पता क्या अल्लाह वालों को क्या क्या तौफीकें मिलती हैं, अपने पे कयास ना किया करें। अल्लाह ताला उनको नए नए आमाल की तौफीकें देता है, बंदा हैरान रह जाता है। चुनाते हमारे अकाबिर रमजानुल मुबारक में तिलावत कुरान की बहुत कसरत फरमाते थे। अगर दिल साफ हो तो कुरान इंसान के दिल को गुदगुदाता है। अब देखें ना, एक आदमी जुकाम का मरीज है, उसको क्या पता अंबर क्या है और खस का अतर क्या है, उसको तो खुशबू का पता नहीं चल सकता। इसी तरह चूंकि हम नजला जुकाम, गुनाहों के नजला जुकाम के मरीज होते हैं, हमें कुरान मजीद की तिलावत के लुत्फ का पता ही नहीं चल पाता। हम एंजॉय नहीं करते तिलावत को, बस खड़े होते हैं अपनी तरफ से। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक खड़ा होता है। कुछ समझ आ रही है कि क्या कहा जा रहा है, वो जरा ज्यादा जज्बे से खड़े होते हैं, बाकी झूम भी रहे होते हैं, खड़े भी होते हैं। और कई तो इस तरह खड़े होते हैं कि बस उनको अल्लाह अकबर का पता चलता है। आम तौर पर क्याम ऐसा ही होता है। हमने देखा जहाज में कई दफा नींद आ जाती है ना होंठ लगा के, तो अचानक जब जहाज लैंड करते हैं ना तो झटके के साथ आंख खुलती है। तो बिल्कुल इसी तरह का क्याम कि इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने पर फिर आंख खुलती है, मैं क्याम में था। ये हमारा क्याम है। अल्लाह वाले इस अल्लाह के कुरान की लज्जत को पाते हैं। कभी आपने सोचा मखलूक का कलाम अगर पढ़ा जाए तो हम पे बड़ा असर होता है। नात पढ़ दी जाए, नज़म पढ़ दी जाए, कोई और अशार पढ़ दिए जाएं, फौरन आंसू। कुरान पढ़ने पे आंसू नहीं निकलते। हमारे अकाबिर ने इसकी वजह बताई। वो फरमाते हैं चूंकि मखलूक में दिल गिरफ्तार होता है तो मखलूक के कलाम से दिल जल्दी मुतासर होता है। अगर ये अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो फिर कुरान की आयतें सुनते ही ये दिल बेकाबू हो जाए। फिर इस पर असरात होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाचे सहाबा नबी इस्लाम की सोहबत में बैठते थे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे, जिक्र करते थे, सहाबा की कैफियत अजीब होती थी। अबू हुरैरा नाम की रिवायत है, तवज्जो से सुनिए, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ अन्नकुम इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिकुम, जब तुम मेरी इस मजलिस से निकलते हो अगर तुम इसी हाल पर रहो, लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम, मलाइका तुम्हारी ज्यारत के लिए तुम्हारे घरों में आए, तुम्हारी ज्यारत करने के लिए। हंजला रजी अल्लाह तआला को नबी इस्लाम ने फरमाया, लौ तकूनु कुलूबुकुम कमा तकूनु इंद ज़िक्र, जैसे मजलिस से जिक्र में आपके दिल होते हैं ऐसे अगर हर वक्त दिल की कैफियत रहे, लसाफ हतकुमुल मलाइकतु हत्ता तुसल्लिम अलैकुम फितुरुकी, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें और रास्ते में तुम्हें सलाम करने के लिए आए। कुरान मजीद की तासीर अजीब, व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत से तो पत्थर भी कांप जाते हैं, इंसान तो फिर इंसान है। इसलिए फरमाया इन्नमल मोमिनून, देखो मोमनों की निशानी, अल्लदीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। देखा ईमान बढ़ता है अल्लाह के कुरान की आयतें सुन के। इसलिए फरमाया अलम यानिल लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ल मिनल हक। सहाबा फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने वाद फरमाया, बड़ा मुअस्सिर वाद था। फरमाते हैं वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन वजलत मिनहल कुलूब, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा वाद किया दिल तड़प गए, वज़रफत मिनहल उयून आंखें बह पड़ी, तो दिल तड़पते हैं तो आंखें बहती हैं, आंसू निकलते हैं। इब्ने मसूद रिलानो फरमाते हैं नेमुल मजलिस, वो मजलिस कितनी अच्छी होती है कि अल मजलिसुल्लज़ी तुनशरु फीहिल हिकमतु व तुरजा फीहिर रहमतु इन्नहु मजलिसु ज़िक्र, जिसमें रहमत बरसती है और वो अल्लाह ताला की याद की मजलिस होती है। फरमाया मजलिसु ज़िक्र महयातुल इल्म, इल्म जिंदा करने की मजलिस, वयुहदिसु फिल क़ल्बिल खुशू, और इससे कल्ब के अंदर खुशू पैदा होता है। फरमाया अल क़ुलूबुल मैततु तहया बिज़िक्रि कमा तहयल अर्ज़ल मैततु बिल मतर, जैसे बारिश से जमीन जिंदा हो जाती है, अल्लाह की याद से इंसानों के गाफिल दिल इस तरह जिंदा हो जाते हैं। तो हमारे अकाबिर कुरान मजीद की तिलावत करते थे और इस तिलावत से उनकी कैफियत ही अजीब होती थी, चुनाचे वो कुरान मजीद पढ़ते थे और उनके आंसू नहीं रुकते थे। हदीस पाक में आता है ऐनान ला तमस्सहुम नार, दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग नहीं छू सकती, उनमें से एक आंख ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह की खशियत से रोती है। चुनाचे फरमाते हैं वयुस्तहब्बुल बुका इंद तिलावतिल कुरान, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए रोना ये एक अच्छा अमल है। वह सिफतुल आरिफीन, ये आरिफीन की सिफत है। व शिआरु इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों का शुमार है। इसलिए फरमाया अल्लाहु नज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी तक्शइरु मिन हुजुलूदुल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मदहल्लाहुल बुकाईना फी किताबिही, अल्लाह ताला ने अपनी किताब अपने कलाम में रोने वालों की मदह फरमाई है। इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही
इदा युतला अलेहिम यखिरून लिल अदकान सुज्जदा। सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद की आयतें हमारे अकाबिर सुनते थे, रोते हुए अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते थे। आज कुरान मजीद की आयत सुनते तो हम भी हैं, सजदे भी हम करते हैं, सजदे की आयत होती है, लेकिन रो के सजदा किसने किया? अब एक आयत सजदा है, घर जाके सजदा कर लेना। इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, फरमाया खर्रू सुज्जदम व बुकिया। कुरान में आयत तो सब पढ़ सुनते हैं, कईयों को तो पता ही नहीं चलता कि आयत कौन सी पढ़ी गई, लेकिन जितने तालिब इल्म पीछे होते हैं या उलमा पीछे होते हैं, उनको अंदाजा तो होता है ना कि यह आयत पढ़ी जा रही है, और इसके ऊपर वो सजदा भी करते हैं, लेकिन उनको पूरी जिंदगी खर्रू सुज्जदा पर अमल की तौफीक है, व बुकिया पर आज तक अमल की तौफीक नसीब नहीं हुई। हम भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि मौला ऐसा दिल दे दे कि जैसे कुरान में आपने फरमाया, हम भी सजदा उस कैफियत के साथ करें। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, अफमिन हादल हदीस ताजबून व तदहकून वला तबकून। तो बका अहलुस्सुफ्फति, अहले सुफा अस्हाबे सुफा इसके ऊपर रो पड़े आयत को सुनकर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यलजुन नार मम बका मिन खशियतिल्लाह। जो अल्लाह के कलाम को सुनकर उसकी खशियत की वजह से रोएगा, उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती। और हदीस पाक में आता है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقال بسم الله الرحمن الرحيم। आपने कुरान की तिलावत शुरू फरमाई, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सुम्मा बका, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोने लग गए, सुम्मा काल बिस्मिल्लाह, सुम्मा बका, फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर रोने लग गए, फआदहा सुम्मा बका। हदीस में आते हैं तीसरी मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ा और अल्लाह के नबी तीसरी मर्तबा फिर रोने लग गए, सुम्मा काल वैलुल लिमन लम तुद्रिकहु रहमतुल्लाह। अल्लाह अकबर। तो वो क्या दिल था कि बिस्मिल्लाह पढ़ने पे रो पड़ता था? हमारे अकाबिर के अल्लाह अकबर वाकयात में ये चीज कसरत से मिलती है। इसलिए वयुर्वा अन्नहु अलैहि सलातु वसलाम काम लैलतन कामिलतन फी आयतिन, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरी रात ये आयत पढ़ते गुजार दी, युरद्दिदुहा, दोबारा बार बार उसको लौटाते थे। तो क्या फरमाते थे? वयबकी, और रोते थे। वो आयत क्या थी? इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अब्दुल्लाह इब्ने मदलान रिवायत करते हैं कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना फरमाती हैं, एक रात दाखल माईया फी फिराशी, नबी इस्लाम मेरे बिस्तर पर तशीफ ले आए, सुम्मा काल फिर फरमाने लगे या आयशा, ए आयशा, एज़निल्ली अतअब्बुदु रब्बी, मुझे इजाजत दे मैं अपने रब की इबादत करूं। कालत, नबी अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, फबका, रोने लग गए, हत्ता रई तो दमुअहू कद बलगतिल अर्ज, हत्ता के मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू जमीन पर टपक रहे थे। इतने आंसू तो थे ना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कुरान पढ़ के इतना रोते हैं कि आंसू टप टप जमीन के ऊपर गिर रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। और यही कैफियत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी। अबू बकर सिद्दीक लानों के बारे में आता है, वकान रजुलन बुकान, वो बहुत रोने वाले बंदे थे, ला यमलिकु दुमुअहु इज़ा क़रा अल कुरान, जब कुरान की तिलावत करते थे अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते थे। अल्लाह अकबर। और यही हाल उमर इब्न खताब लानों का था, चुनाचे युसल्ली बिन नास, एक मरतबा उमर लानों ने नमाज की इमामत फरमाई, फबकाफी किराते ही, قرآن کی تلاوت کرنے میں وہ روئے، حتیٰ ان قطعت قراءت ہو، حتیٰ کہ ان کی قراءت موقوف ہو گئی، ختم، روکنی پڑی. وسمع نحیبہ من وراء ثلاثۃ صفوف، صحابی کہتے ہیں کہ تین صف پیچھے تھا، ان کی ہچکیوں کی آواز میں سن رہا تھا. اللہ سسکیوں کی اور ہچکیوں کی آواز تین صف پیچھے والا بندہ سن رہا تھا، اتنا تو رو رہے تھے نا. اور کیا آیت پڑھ رہے تھے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. اور یہی حال باقی صحابہ کا. وقارہ ابن عمر، ابن عمر لانو ایک مرتبہ تلاوت کی، یوم یقوم الناس لرب العالمین بقا حتی خرا، رونے لگ گئے حتیٰ کہ زمین پر گر گئے. وم تنا ان قرات اخبا بعدہا، جو بعد میں قرت کرنی تھی وہ قرت ان کی وہیں موقوف ہو گئی. مزاحم بن ظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلی بنا سفیان الثوری المغرب فقرا حتیٰ بلغ ایاک نعبد و ایاک نستعین بکا حتیٰ ان قطعت قراءتہ. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی. سورہ فاتحہ کے اندر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تو وہ رونے لگ گئے، حتیٰ کہ اس کے بعد وہ قرات ہی نہ کر سکے. فزیر بن عیاض رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے، روتے تھے. ایک دفعہ پڑھا وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، یہ لفظ دل پر بجلی کی طرح پڑے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک رات یہ آیت پڑھ کے روتے رہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روئے، اِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. محمد بن المنقدر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آیت پڑھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور روتے رہے حتیٰ کہ روتے روتے صبح ہو گئی. ایک بزرگ تھے، انہوں نے تہجد میں آیت پڑھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور اس کو پڑھ کر وہ روتے رہے، پوری رات گزار دی. نبی علیہ السلام نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ مجھے تو بخار ہے، تو میں کس کو تلاوت نماز کی امامت کے لیے کہوں، تو آپ کا ارادہ تھا کہ وہ کر صدیق لانو کو کہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ غلبہ البکا. آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ نرم دل کے ہیں، جب انہوں نے تلاوت شروع کی تو ان پر رونے کا غلبہ ہو جائے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام تلاوت کے وقت کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روتے تھے. کان فی وجہ عمر بن الخطاب خطان اسودان من البکا، عمر دلانوں کے چہرے پر دو لائنیں تھیں کالے رنگ کی، اور اتنے آنسو گرتے تھے کہ رو رو کر آنسوؤں کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے. کتنا روتے ہوں گے بھائی کہ رو رو کر چہرے پہ نشان پڑ گئے. اللہ اکبر. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملم یب کے عند تلاوت قراءت القرآن، جو شخص قرآن مجید کی قراءت کے وقت نہیں روتا، فل یب کے علا فقدان ہی للبکا، اس کو چاہیے کہ نہ رونے پر روئے، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، اس لیے کہ یہ بڑی مصیبت ہے اس کے اوپر، اس کو رونا ہی نہیں آتا. عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ کانو کما وصفہم اللہ تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم. چنانچہ ایک صحابی نے قرأت کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنی، مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آخر ان کے دل اتنا جلدی ریسپونڈ کیوں کرتے تھے؟ इसकी रीजन जरा सुनिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बात गौर से सुनने की है। फरमाते हैं, लौ तहरत कुलूबकुम मा शबितुम मिन कलाम रब्बिकुम, अगर तुम्हारे दिल गुनाहों की मैल कुचैल नजासत से पाकीजा हो तो तुम्हारे दिल कुरान सुनते हुए कभी थक ही नहीं सकते, कभी भर ही नहीं सकते। होते ना पेट भर जाना, कहते हैं कुरान सुनने से आपका दिल भर नहीं सकता अगर आपका दिल गुनाहों से पाक होगा। इसका मतलब ये कि हमें जो कुरान सुनना बोझ नजर आता है तो वजह क्या बनी, हमारे गुनाहों का बवाल होता है, जुल्मत होती है, गुनाहों की मैल होती है, जिस वजह से दिल पर उसके असरात नहीं होते। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीब बात फरमाते हैं, फरमाते हैं मन अहब्बल कुरान अहब्बल्लाहु व रसूलहु, जिसने कुरान से मोहब्बत की उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। फमन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, और जो किसी से मोहब्बत करता है अक्सर उसका जिक्र करता है। तो हम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह का कुरान पढ़ने में हमारा जी चाहेगा कि हम पढ़ते ही रहें, हमारा दिल भरेगा ही नहीं। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इज़ा अरत्ता अन तारिफ़ कद्रका इंदल्लाह, बात जरा तवज्जो से सुनिए, अपनी बात को समेटना चाह रहा हूं। फरमाते हैं इन कुन इन अरत्ता अन तारिफ़ कद्रका इंदल्लाह, कि अगर तू चाहे तू अल्लाह के हां अपनी कदर अपना मकाम मालूम कर ले, फंजुर इला कदर इल कुरान इंदक, तो ये देख के तेरे नजदीक अल्लाह के कुरान की क्या कदर है। जितना तू अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करता है इसी कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे मोहब्बत फरमाते हैं। तो इससे क्या नतीजा निकला, हमें कुरान मजीद के साथ इश्क का दर्जा रखना चाहिए, मोहब्बत का दर्जा रखना चाहिए, इसके बदले अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाएंगे। चुनाचे कोई दिन तिलावत कुरान के बगैर न गुजरे। सब हजरात दिल में इरादा करें, हुफाज तो खैर इस बात के ज्यादा अहल हैं, लेकिन अवामुन्नास भी इस बात का इरादा करें कि आज के बाद हमारी जिंदगी का कोई दिन कुरान की तिलावत के बगैर नहीं गुजरे। थोड़ा ज्यादा तो होता ही है, ये क्या अजीब बात हुई, रास्ता चलते कोई पूछ ले जी कि मैंने फलां जगह जाना है तो 10 मिनट उसको दे देते हैं और सारे दिन में कुरान मजीद की तिलावत के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। तो हमने तो अल्लाह के इस कलाम की वो कदर न की जो करनी चाहिए थी। ये हमारे पास मेहमान है, अगर हम इस मेहमान को इग्नोर करेंगे तो क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। आप ज़रा गौर करें कि अगर आपका कोई बहुत करीबी अजीज अपने बच्चे को आपके पास भेज दे और आप उस बच्चे से मुलाकात ही ना करें, वो कई दिन आपके यहाँ ठहरे, न बात न चीत न मुलाकात, और वो इसी तरह वापस चला जाए तो वालिद को क्या बताएगा, कहेगा ना कि अब्बू उसने तो मुझसे मिलने ही गवारा ना किया, हक मांगेगा ना अपना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी तो हमारे यहाँ मेहमान भेजा है ना कुरान मजीद, अगर इसकी तिलावत नहीं करेंगे महीनों महीनों। जी मुझे एक तालिब इल्म कहने लगे कि मुझे बुखारी शरीफ पढ़े 9 साल का अरसा गुजर गया और इस 9 साल में बैत होने के बाद मैंने पूरा कुरान मुकम्मल पढ़ा, वरना कुरान मुकम्मल पढ़ने की मुझे तौफीक नसीब ना हुई। इसलिए यह महीना शहरुल कुरान है, हमें चाहिए कि हम इस कुरान को पढ़ें और अपने रब से दुआएं मांगें। चुनाचे हदीस पाक में है कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक सवाल पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शख्स सीधा बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। उम्मत की वालदा ने सवाल पूछने का हक अदा कर दिया। जब भी ये हदीस पढ़ता हूं ना तो दिल में ये बात आती है कि वाकई उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत पाने का हक अदा कर दिया। इस कदर खूबसूरत सवाल पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शख्स बिला हिसाब सीधा जन्नत में दाखिल होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने गुनाहों पे रोएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसको बिला हिसाब सीधा जन्नत में दाखिल फरमा। हम अगर कुरान पढ़ के रोएं तो हमारे गुनाह इस तरह झड़ें जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाया करते हैं। किसी शायर ने अजीब बात कही, जेड़ा लुत्फ है रोवण अंदर ओ विच बयान ना आवे, कि जो लुत्फ रोने में है ना वो बयान में नहीं आ सकता। जेड़ा लुत्फ है रोवण अंदर ओ विच बयान ना आवे, ते रोना दिल दी मैल उतारे नाले रुठड़े यार मनावे। ये रोना दिल की मैल उतारता है और रूठे हुए यार को मना दिया करता है। जेड़ा लुत्फ है रोवण अंदर ओ विच बयान ना आवे, रोना दिल दी मैल उतारे नाले रुठड़े यार मनावे, ते यादे खुदा विच रोवण वाला कदी दोजख विच ना जावे। जो अल्लाह की याद में रोता है कभी उस बंदे को दोजख में नहीं डाला जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी कुरान मजीद के साथ ऐसा सच्चा इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक नसीब फरमाए। ये कुरान मजीद अल्लाह की बोली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसको पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। वह आखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ देर मुराक़बा कर लीजिए। तकड़ी घत के तोल नमाही ते असी डाढ़े ए बांभरे, तकड़ी घत के तोल नमाही ते असी डाढ़े ए बांभरे, दर आयां दी लाज तुहानू चाहे खोटे ते चाहे खरे, दर आयां दी लाज तुहानू ते ना करो परे परे, गुलाम फरीदा पल्ले ऐब हजारा ते कोई माण किस ते करे। ना मैं सोहणी ते ना गुण पल्ले, ते मैं साईं नूं किवें मनावां, ना मैं सोहणी ते ना गुण पल्ले, ते मैं साईं नूं किवें मनावां, चारे लड़ मेरे चिकड़ां लिथड़े ते मैं केड़ा मल मल धोवां, साबण थोड़ा ते मैल घनेरी ते मैं बैपतना ते रोवां, गुलाम फरीदा कोई वस ना चलदा ते मैं हंजुआं दे हार परोवां।
محمد رسول الله سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہم نہیں جانتے آج کی رات آخری ہے، یہ رمضان کی ایک رات اور بھی نصیب ہوگی. اے اللہ، قرآن مجید مکمل ہو چکا، آج کی رات میں ہم گناہگاروں کی توبہ قبول کر لیجئے، آج کی رات کو بخشش کی رات بنا دیجئے، مغفرت کی رات بنا دیجئے، عتق من النار کی رات بنا دیجئے. میرے مولا، ہم آپ کا قرآن سنتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. میرے مولا، ہم اپنے دل کی سختی کا علاج کس سے کروائیں؟ اے اللہ، آپ ہی تو جاننے والے ہیں حقیقت حال کو. اللہ، دل کو ایک رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اس سختی کو اللہ نرمی میں تبدیل کر دیجئے، اللہ اس کی میل کچیل کو ختم کر دیجئے. اے اللہ، ہمیں بھی بکا والی نعمت عطا فرما دیجئے، اپنی یاد میں رونے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے. اللہ، قرآن مجید کا لطف عطا کر دیجئے، لذت عطا کر دیجئے. اے اللہ، ہمیں رات کے آخری پہر میں مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے، تہجد پہ دوام عطا فرما دیجئے. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا، جسمانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، روحانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی رحمت سے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجئے. اے اللہ، آج کی رات میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ بات سن رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب کی مغفرت فرمائیے اور اس کو ہماری بخشش کی رات بنا دیجئے. میرے مولا، رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. کریم آقا، ہمارے قرآن پاک پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، تراوی کو قبول فرما، اعتکاف بیٹھنے کو قبول فرما، اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.